मुश्किल अल्फाज की वजाहत। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो आपको मुश्किल अल्फाज लगते हैं उसके निशान लगाएं, तो आप लोगों ने लगाए। अच्छा, तो जो नए हैं और मुश्किल हैं, तो मैं एक एक करके हम साथ साथ देखते हैं, लेकिन ऐसे ही मैं दो तीन लोगों से अंदाजा करना चाहती हूँ कि आपके पास कितने अल्फाज हुए, मुश्किल अल्फाज हुए। शायाना अंदाजन कितने हैं आपके पास, कितने हैं? चार। अच्छा, आपके पास चार हैं, आपके पास आठ हैं, और आपके पास कितने हैं? कोई भी नहीं है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके पास कितने हैं? छह। तो चार, छह, आठ और कोई भी नहीं। तो आइए इंशाल्लाह इनको देखते हैं। इंशाल्लाह आप सबकी जिंदगी में ये दिन आएगा कि कोई भी मुश्किल लफ्ज नहीं है, लेकिन मुश्किल लफ्ज का आ जाना या लगना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जाहिर है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लेकिन ये कि पढ़ने के बाद उसको याद ना करना, ये अजीब बात है। यानी जो एक दफा आए तो उसको पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि उससे शनासाई हो जाए, दोस्ती हो जाए, कुर्बत हो जाए और वो अपना हो जाए, और ऐसा अपना कि फिर जब वो आए तो ये ना कहें कि ये बेगाना है और मैं इसको नहीं जानती, है ना? तो आयत नंबर 7 जो है, आप बताएंगी इसमें कौन सा कोई नया लफ्ज भी आया है? कोई नया लफ्ज नहीं है, है ना? सारे आपने पढ़े हुए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है कि नसीब जो है नसब से है, है ना, गाड़ देना, इसी से ये हिस्से के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सा हिस्सा होता है? जो भी तकदीर में है, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है ना। खलाक भी आपने पढ़ा था, हिस्सा है ना, जो इखलाक की वजह से किसी को मिलता है, उसके इखलाक के हवाले से। नसीब, इसी से जैसे कहते हैं उसके नसीब में ये था, उसकी किस्मत में ये था, तो नसब से है, गाड़ देना। फिर है अल वालिदानी, है ना, तो वालिद से वालिदान या वालिदैन, तो माँ बाप दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकरबून कुर्ब से है, करीबी रिश्तेदारों को कहते हैं। फिर इसके बाद जो है कल्ला, ये काफ लाम लाम कम होना, कलील, किल्लत, ये आपने सुना ही होगा। फिर कसुर, तो ये काफ सा रा कसरा कसीर कसरत, ये भी आपने सुना होगा। और मफरूजा फर्ज से है, फारा द्वाद, और आप नमाजों के फराइज क्या हैं, हज के फराइज क्या हैं, रोजे के फराइज क्या हैं, हमारे फराइज क्या हैं, हुकूक क्या हैं, हाँ, तो ये लफ्ज आप अक्सर सुनती हैं। और वैसे ये सख्त चीज को काटने के लिए बोला जाता है, और कोई चीज जो कदीम हो जाए, बूढ़ी पुरानी, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ भी चुके आप। फिर इसके बाद जो है, अगर आप अगली आयत देखें, 8 नंबर, तो कोई लफ्ज भी इसमें जो है वो नया नहीं है। किस्म जो है, वाइज हदर अल किस्म, किस्म के मानी क्या होते हैं? तकसीम करना, है ना, तकसीम करना, इसी से जो है वो किस्मत, यानी जो उसकी तकसीम में आ गया, जो उसके हिस्से में आ गया, ठीक है ना। और फिर जो है फर्ज़ुकुहुम, देखने को बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन माशाल्लाह आपको आता है। इसका रूट वर्ड क्या है? रज़ाक़, बिल्कुल शुरू में। और हम आमतौर पर रिज्क से मुराद खाने पीने की चीजें लेते हैं, लेकिन रिज्क से मुराद क्या है? यानी हर वो नेमत जो अल्लाह ताला किसी को जिस्मानी और रूहानी तौर पर देता है, जिसमें इल्म भी है, हुनर भी है, सलाहियतें भी हैं, और इसके अलावा जो है वो खाने पीने की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है वो रिस्क में शामिल होती हैं। मारूफ उर्फ से है, है ना, जानी पहचानी चीज। आपने वो मशहूर आयत तो आपको आती होगी कि वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैरी यामुरूना बिल मारूफ वयनहऊना अनिल मुनकर, कि नेकी का हुक्म देना, तो नेकी जानी पहचानी है। और आप देख लें, बाज नेकियां कदरें ऐसी हैं, हर सोसाइटी में, हर मजहब में, हर दौर में वो जानी पहचानी रही। हया को ले लें, अल्लाह की इबादत को ले लें, रोजे को ले लें, सब चीजें हर जगह। फिर वल यक्षा, या पहले पढ़ चुकी हैं, खाशिन या, और मानी है किसी की अजमत और हैबत की वजह से जो दिल पर कैफियत होती है उसको खशियत, यानी उसकी जो डरता है इंसान, तो उसको कहते हैं खशियत। और वल यक्षा, तो व जो है ये अलग है और लाम जो है ये लामे अमर है ना। तो हाँ, लामे अमर की वजह से जो है असल में, जैसे मैंने कहा कि खाशीन या भी है, या आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही, क्यों? हाँ, लाम की वजह से, इस लामे अमर की वजह से जो हरफे इल्लत है ना, या गिर गया है। ठीक है, तो किसी की अजमत और हैबत की वजह से डरना। जुर्रियतन आप पढ़ी चुकी हैं, जाल रा रा है ना, मानी क्या है इसके? हाँ, मतलब चूंटियों को भी कहते हैं, उसी से छोटी औलाद को, और हर तरह की औलाद के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ना। जैसे हर तरफ जैसे चूंटियां बिखरी हुई होती हैं, तो औलाद जब फैल जाती है। फिर आप आगे चलें तो कौलन सदीदा, कौलन सदीदा, और सदीदा जो है इसका रूट वर्ड क्या है? सीन दाल दाल। सीन दाल दाल, और ये लफ्ज जो है ये सदीद, मजबूत पुख्ता, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई चीज जो है वो मजबूत है, वो पुख्ता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपने ये लफ्ज पहले पढ़ा था? हाँ, जैसे सीधी बात करो, पुख्ता बात करो, इसी तरह दीवार को भी सदी सद कहते हैं। जैसे किसी चीज का सदे बाप करना, उसकी रोकथाम करना है ना, तो ये मारूफ है, आप उर्दू में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बुतून बतन से है, अगली आयत में है ना। और आप पढ़ा ये कि अंदरूनी हिस्से को कहते हैं पेट के, और वसा यसलऊना, वसाला मिलाप, दाखिल होना, सईरा सीन ऐन रा, और इससे मुराद क्या है? आग, आग का जलना, भड़कती हुई आग, सीन ऐन रा। और दोजख के लिए भी सईर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें आग का अजाब इतना कसीर है, इतना शदीद है, जैसे किसी की खास सिफत की वजह से उसको वो नाम ही दे दिया जाए। दीवानगी की हालत को भी सोर कहते हैं। सारा आग जलाना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूसीकुम वो स्वादिया, और नसीहत के लिए, अहम नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खास तौर पर वो नसीहत जो कोई मरते वक्त कोई करे, तो उसे वसीयत कहते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो आयत नंबर 11 में हज, हा जोए जोए, हज। और हज जो है ये कहते हैं हिस्से के लिए, हिस्सा। हिस्से के लिए वैसे कुरान में 7 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, उनमें से एक तो है जुज, जो किसी चीज का हिस्सा या टुकड़ा हो। दूसरा है जुल्फ, रात का इब्तदाई हिस्सा। तीसरा है हज, खैरो फजल का हिस्सा, यानी माल का हिस्सा, खैरो फजल का हिस्सा, किसी का खुशकिस्मत होना, सआदत मंदी मिलना। इसी तरह कुरान में ये लफ्ज तरका के, विरासत के मुकर्रा हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? यानी ये खुशकिस्मत ही है ना कि किसी का मरने वाला उसको महरूम और ऐसे ही छोड़कर नहीं मरा, बल्कि उसके पास माल था और बाद में इसको हज मिला, हिस्सा मिला, तरके में हिस्सा मिला, यानी खैर और फजल और मालदारी में भी उसको हिस्सा मिला। खलाक वही आप पढ़ ही चुकी कि वो फजीलत जो इंसान अपने इखलाक की बदौलत हासिल करता है। फिर नसीब, मैंने कहा था जैसे गाड़ देना निशान के तौर पर राह में गाड़ा हुआ पत्थर, उसको भी नसीब कहते हैं, और नसीब से मुराद वो हिस्सा होता है जो किस्मत का लिखा हुआ है। फिर किफल, इससे मुराद वो हिस्सा है किसी काम का लाजमी बदला, खा अच्छा हो या बुरा, किफल। और फिर सातवां है बाद, यानी किसी गुल के पुल के जुज का हिस्सा। पहले भी आपको ये बताए थे, और रिपीट करने का मकसद क्या है कि चीजों की तकरार जो है वो इल्म का हिस्सा बन जाती है, और जब उस पर अमल किया जाए तो पुख्तगी मिल जाती है। उनसा यैन असल में जैसे मुअन्नस या उन्स, एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब या नून लग जाए तो
मुअन्नस,
हाँ, दो के लिए, दो मुन्नस हसनिया यानी दो औरतें, उनसा यैन। तो आपने जो है ये भी पढ़ा था कि उनसा यैन जो है ये क्या है, यानी औरत के लिए आता है, मुन्नस के लिए आता है। औरत के लिए आपने और भी तो कई लफ्ज पढ़े थे ना, निसा, इमरातुन, शाबाश। इमरातुन का ऑपोजिट क्या है? रजोलुन। हाँ, तो जब जो है आप ये पढ़ेंगी उनसा यैन, यानी इसका रूट वर्ड है अलिफ नून सा और उन्स, इसी से मोनस है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? मुजक्कर। हाँ हाँ है ना, तो उन्स मोनस मुजक्कर, जकर से मुजक्कर, उसके शुरू में मीम लग गया, इसके शुरू में भी लग गया। तो आप यानी एक चीज का ऑपोजिट जो है अगर आप याद करें तो दूसरी चीज को बहुत याद आ जाती है। तो उनसा यैन से मुराद यहाँ दो मोनस है। दो मोनस का तर्जुमा क्यों करेंगे? या नून की वजह से, असल में एक या जो है वैसे आपको नजर आ रही है, दूसरी फिर या आपको नजर आ रही है, तो लगता है आप थोड़े से परेशान हो गए हैं, है ना। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसा यैन के दो मोनस के बराबर। फिर आप देखिए, फिर निसा आ गया, तो निसा का ऑपोजिट क्या है? रजो। शाबाश। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो अब यहां पर आपको इस आयत में सुलुसा और सुदुस और ये चीजें इस तरह की आपको मिलेंगी, तो इनका ताल्लुक भी अदद मादूद से है ना। इनका ताल्लुक अदद मादूद से है, और अदद मादूद गिनती को कहते हैं, काउंटिंग को कहते हैं, और ये मार्फा यानी ये इस्म में से होती है। अस्माए आदाद भी इस्म मार्फा की एक किस्म है। अच्छा, इसमें जो है जैसे आपने पहले पढ़ा था ना औरतों के बारे में कि दो दो, तीन तीन, चार चार, वो भी आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसमें जो है आप देखें तो गिनती का अंदाज मुख्तलिफ था, मसना व सुलासा व रुबा। अब यहां पर आप देखें तो आराब जो है वो मुख्तलिफ है, इसमें सुलुसा है, फिर वाहिद है, फिर निस्त है, फिर सुदुस है, और आप और आगे चलें तो इसमें फिर आपको जो है सुमन भी नजर आएगा। आयत नंबर 12 को अगर आप देखें तो सुमन नजर आता है, फिर सुदुस नजर आता है। तो ये सारी इनका ताल्लुक भी जो है वो गिनती के साथ है। और एक तो हम सीधी सादी गिनती जो है वो पढ़ते हैं जिसमें वाहिद इस्नैन सलासा होता है ना। और दूसरा जो है जैसे यहाँ पर जो है वो सुलुस है, सुदुस है, तो इसका अगर आप अंदाज देखेंगी तो ये आम गिनती से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इसको जो है क्या कहते हैं इस गिनती को, कि इससे जैसे कोई भी जो है जैसे उसका कुछ हिस्सा, हाँ जैसे पहला, हाँ इसको, हाँ फ्रैक्शन, आप क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। हाँ, यानी कसरी आदाद इसको कहते हैं, कसरी आदाद यानी एक चीज के बटे हुए हिस्से, आधा। और आधे को आप कैसे कहेंगे?
1/2।
1/2। और इंग्लिश में क्या कहेंगे?
हाँ,
ये यानी अगर दो किसी चीज के हिस्से करेंगे तो उसमें से एक ना, तो 1/2 जैसे हमारे यहाँ कहते हैं। ये ना फोलून के वजन पर आमतौर पर इस्तेमाल होता है, फोलून के वजन पर 10 तक आता है, जैसे सोलोस तीसरा हिस्सा, 1/3 को क्या कहेंगे? हाँ, 1/3 यानी तीसरा हिस्सा। सुदुस को छठा हिस्सा यानी 1/6। फिर उशुर 10वां हिस्सा, 1/10। ठीक है, तो मैं चाहती थी कि आपको जब अब इसकी अगर आप 6 लिख देंगी तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? 6 में से अगर किसी चीज के आप जैसे आपके पास जो है, मतलब मैं कहती हूं कि 1/3 या 1/6, तो 6 पेंसिलें हैं, तो 1/6 जो है, मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो शकीला को 1/6 दे दें, तो कितने देंगे आप? 1/6। किसी चीज के 6 हिस्से करके उसमें से छठा हिस्सा आप शकीला को देंगी, और फिर उसके बाद जो है नाजिया को 1/3 दे दें, कितना देंगे? हिस्से करेंगी चीज के और तीन में से एक उसको दे देंगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि कसरी अदाद या फिर फ्रैक्शन। तो ये चीज आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए। जब आप तर्जुमा करें तो ये ना करें कि 6 उसको दे दें, 3 उसको दे दें, 8 उसको दे दें। तो ये मैंने खास तौर पर आज के सबक में ये बात चाहती थी, आयात की तशरी में इसकी वजाहत हो जाए कि इससे मुराद जो है वो क्या है, क्योंकि आप एक ही को उठा के पूरे 6 के 6 दे देंगे तो बाकी कहां जाएंगे, क्योंकि ये विरासत की तकसीम हो रही है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि बाकी इसमें कोई भी ऐसा यानी इसमें जो है वो नया लफ्ज है। हाँ, जमीरें आई हैं, और अगर जमीरों की आपको जिस चीज को समझ होगी तो आप जो है उसे अंदाजा कर सकती हैं। मसलन मैं आपसे सवाल पूछती जाती हूँ, जैसे आयत नंबर 11 जो है इसमें कुन्ना आया है। कुन्ना किसके लिए होता है? औरतों के लिए, और औरतें भी कौन, थोड़ी के ज्यादा? ज्यादा औरतों के लिए, जमा औरतों की, यानी जो है वो तुम सब औरतें यूं कह सकती हैं। और तुम से मुराद कौन है? हाँ, सब आदमी मर्द। अच्छा, कुन्ना का ऑपोजिट यहाँ पर इसी आयत में आगे थोड़ा सा आया है, वो क्या है? हुन्ना। शाबाश, कुन्ना का ऑपोजिट क्या है? हुन्ना। हुन्ना वो सब औरतें, कुन्ना तुम सब औरतें, तुम वो सब मर्द, ठीक, तुम सब मर्द, हुम वो सब मर्द। तो तुम जो है, जैसे आप सामने जो बैठे हुए हैं ना, जैसे जजाकल्ला, आप जजाकिल्ला कहती हैं तो सामने वाले को कहती है ना, करीब के लिए आता है। और हुम या हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, दूर के लिए आता है। तो इस तरह थोड़ी सी भी आपको पहचान होगी तो इंशाल्लाह काम आसानी से आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, रेपिटेशन भी चल रही है। दैन आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, कर्ज के लिए आता है। और अगर दाल के नीचे जेर आ जाए तो दीन, दीन हो जाएगा, बस अब दीन है ना। फिर इसी तरह जो है वो ला तदरूना, दाल रा या के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दाल रा या इसका रूट वर्ड है, और दाल रा या जो है इसके मानी है जानना, किसी चीज का इल्म या समझ हासिल कर होना, जानना और समझना। और अगर आपने निशान नहीं लगाया तो आपको मुश्किल था ही नहीं, है ना। अगर आपको किसी को नहीं पता चलता कि ला तदरूना कहाँ पे है तो आपने निशान ही नहीं लगाया था, आपको आता होगा फिर, है ना। तो निशान लगाना चाहिए ना, तवज्जो से देख कर निशान, ताकि पता चले। ये उसी आयत नंबर 11 में आगे चलकर था। आपस में बात नहीं करें प्लीज। अकरबु काफ राबा कुर्ब से है, और यहाँ पे इसम तफ़सील है यानी ज्यादा करीब। फिर उसके बाद जो है अगर आप आयत नंबर 12 को देखें तो यहाँ पर फिर जो है इसमें ऐसा कोई भी नया लफ्ज़ नहीं है। हाँ, वला हुन्नर रुबू, रुबू जो है ये आया है। तो रुबू जो है, आपने से मुझे बताए कि रुबू का आप तर्जुमा क्या करेंगे, नुसरत आप बताएं। चौथाई हिस्सा, चार पेंसिलों में से आपने सुरैया को चौथाई हिस्सा देना है तो क्या देंगे? एक पेंसिल देंगे, तो चौथाई हिस्सा ना कि चार, ठीक है। फिर जो है आप आगे चलें तो सुमन आ गया। सुमन जो है ये 8 को कहते हैं, यानी 8 को नहीं कहते, 8वें हिस्से को कहते हैं, बल्कि वाहिद इसनैन सलासा अरबा खमसा, फिर क्या है सबा। हाँ, अभी किसी ने क्या कहा था? हिस्सा कहा था ना, सित्ता, सित्ता, सित्ता सबा समानिया, समानिया 8 है और सुमन जो है वो 8वां हिस्सा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे चलें तो जो है एक और खास लफ्ज है कलाला, है ना, कलाला। और कलाला जो है इसका रूट वर्ड है काफ लाम लाम, कलाला। और इससे मुराद है, कहते हैं कि ऐसी चीज को अकलील कहते हैं जो सर को इसके अतराफ यानी किनारों से घेर ले। कलाला को कलाला इसलिए कहते हैं कि उसूलो फरा के एतबार से तो इसका वारिस ना बने, लेकिन अतराफ व जवानिब से वारिस बने। यानी असल में कलाला जो है ऐसे को कहा जाता है, ना इसका ऊपर से कोई रिश्तेदार हो ना नीचे से कोई हो। उसूल जिसको कहते हैं, असल किसे है, यानी जड़ भी कोई नहीं है, बाप दादा वगैरह नहीं। असल में कलाला विरासत की एक टर्म है, और कलाला जो है उसको कहते हैं जिसका कोई सिरा ना हो। गोया इस शख्स तक पहुंचते पहुंचते नस्ल और नसब का सिलसिला थक गया और आगे ना चल सका। यानी वो मैयत, वो मर्द या औरत जिसकी ना औलाद हो और ना ही इसके माँ बाप हो, यानी ना उसकी उसूल हो यानी माँ बाप नहीं है। फरा शाख ब्रांचेस को कहते हैं, उसूल जो है रूट्स को कहते हैं यानी माँ बाप। और फरा यानी ब्रांचेस, तो ना उसके उसूल है ना उसकी ब्रांचेस है, ना माँ बाप है ना औलाद है। तो आमतौर पे जब अभी आप विरासत की तकसीम पढ़ेंगी तो आप देखेंगी कि माँ औलाद को मिलती है, माँ बाप को मिलती है, फिर करीबी रिश्तेदार बहन भाई वगैरह सब आते हैं। तो असल में कलाला जो है उस मैयत को कहते हैं जिसके माँ बाप भी नहीं है और औलाद भी नहीं है, यानी ना इसका कोई ऊपर से कोई सिरा मिल रहा है ना नीचे से। तो अब क्या है, अकलील अरबी जबान में ऐसी चीज को कहते हैं जो सर को इसके किनारों से घेर ले। और कलाला भी, कलाला को कलाला इसलिए कहते हैं कि असूलो फरा के एतबार से तो इसका कोई वारिस नहीं बन रहा, ना तो रूट्स है ना ब्रांचेस है, ना माँ बाप है ना औलाद है, लेकिन इर्द गिर्द से वारिस बन रहे हैं। हवाशी, हाशिया की जमा हवाशी, इर्द गिर्द से। आप जैसे किसी चीज के इर्द गिर्द हाशिया लगाती है ना, तो हवाशी इर्द गिर्द से उसके वारिस जो है वो बन रहे हैं। तो कलाला ये एक नया लफ्ज है और इसको याद करना समझना जो है वो जरूरी है ताकि आपको जो है वो समझ आए। बाज लोग कहते हैं कलाला कलल से है जिसके मानी थक जाना है, कि इस शख्स तक पहुंचते पहुंचते सिलसिला नस्ल और नसब थक गया और आगे ना चल सका। तो इन्हें वो थका नहीं, औलाद ही नहीं तो फिर आगे कहाँ चलता, पीछे माँ बाप नहीं तो फिर कहाँ रहता है ना, नसब है ना नसल है कुछ भी नहीं। तो कलाला, समझ आ गया आपको? अभी अभी इंशाल्लाह ये देखेंगे, तफसील देखेंगे कौन कौन इसमें आता है। तो आगे चलते हैं। तो गैरा मुदार, मुदार जो है इसका रूटवर्ड क्या है? हाँ, द्वाद रारा। और ये किस किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है? नुकसान के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो है मुदार जो है ये इस्म फाइल है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, यानी मुदार। असल में ये लफ्ज था मुदार, मुदार रुन था। तो फिर जो है आप देखें तो एक रा जो है वो इसमें खत्म हो गई है, इसीलिए शद भी आपको नजर आ रही है। तो मुदार क्या होता है कि मरने वाला अपने माल में से 1/3 से ज्यादा वसीयत कर दे। वसीयत कितनी की जा सकती है? 1/3 की, ज्यादा से ज्यादा। कम करें तो बेहतर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर कोई करना चाहे तो 1/3 यानी तीसरा हिस्सा विरासत का वो वसीयत जो है वो कर सकता है। तो मुदार यानी उससे ज्यादा कर दी तो उसने नुकसान पहुंचाया। तो मुदार नुकसान पहुंचाने वाला, तो गैरा मुदार नुकसान ना पहुंचाए। और फिर जो है आप आगे देखें तो आयत नंबर 14 है, उसमें वमई यासी, यासी जो है ऐन स्वाद या, और या जो है वो हरफ इल्लत है और ये गिर चुका है। क्यों हरफ इल्लत गिरा है? मन आया है, मन हरफ शर्त है, तो हरफ शर्त मन की वजह से ऐन स्वाद या, यानी उसमें से या हरफ इल्लत जो है वो गिर गया है। और फिर जो है इसके मानी है नाफरमानी करना, मासियत, आसी बाज लोग हैं। फिर इसके बाद है वयताअद्दा, पहले भी पढ़ चुकी हैं, ऐन दाल वाओ, ये तफाउल के वजन पर है और इसके मानी है अहकाम इलाही से तजावुज करना, अदु यानी दुश्मनी, तजावुज करना। और युदखिल हु दखला से है दाखिल करना, कि दाखिल करेगा इसको। और अजाब मुहीन, मुहीन हा वो नून, मानी क्या होते हैं? नजरों से गिरा देना, बेकदर करना, जलीलो रुसवा करना। तो ये थे मुश्किल अल्फाज की वजाहत।
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين